नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली में पंजीकृत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट। सरकार ने सावदा घेवरा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फ्लैट्स में 717 झुग्गीवासियों को आवास देने का निर्णय लिया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। और दिल्ली में कल मैं भी अम्बेडकर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में पंजीकृत 30 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम मूल्य वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2030 तक के लिए जारी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मसौदे में यह बात कही। एक रिपोर्ट।
इस नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 3,900 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। पहले वर्ष में 2,25,000 रुपए तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर प्रति किलोवाट घंटा 10,000 रुपए का आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक ऑटो सहित इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए पहले वर्ष में 50,000 रुपए से लेकर तीसरे वर्ष तक 30,000 रुपए तक का आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक चौपहिया मालवाहक गाड़ियों के लिए शुरुआती आर्थिक प्रोत्साहन 1,00,000 रुपए तक की होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
सरकार ने सावदा घेवरा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फ्लैट्स में 717 झुग्गीवासियों को आवास देने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इनमें 528 पात्र और 189 अपात्र श्रेणी के लाभार्थी शामिल हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी के लिए केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1,12,000 रुपये की सहायता राशि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दी जाएगी। साथ ही लाभार्थियों को अपने फ्लैट के रखरखाव के लिए 30,000 रुपए 3 माह के भीतर जमा करने होंगे। जल मंत्री प्रवेश साहेब सिंह ने गवर्नमेंट ऑन व्हील्स के तहत राजधानी के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इन क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग मुख्यालय से मल्टी स्टोर्स ऑफिस बिल्डिंग, मूलचंद, एम्स, छतरपुर मेट्रो, नेल्सन मंडेला मार्ग, मुनरेगा फ्लाईओवर, विवेकानंद मार्ग होते हुए हयात रिजेंसी शामिल है। इस दौरान लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। श्री सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि काम में देरी और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट ऑन व्हील्स के पीछे काफी समय से हम लोग इसको चला रहे हैं और ये आज एक ही बस में हमारे सारे तीनों विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सबको रोड पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या को दिखाई दे रहा है उसको उनके बारे में बताया जा रहा है। कहीं पे रोड टूटी हुई है, कहीं पे कप सोन होना है, कहीं पे हॉर्टिकल्चर के काम होने हैं, तो ये सब उनको बताए जा रहे हैं और इससे काफी कामों को प्रगति मिलती है, काफी काम हमारे स्पीड से हो जाते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रियल एस्टेट डेवलपर अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों की तलाशी ली। कल दिल्ली और गुरुग्राम में कंपनियों के निदेशकों, प्रमोटरों और संबंधित संस्थाओं से जुड़े 10 परिसरों पर तलाशी ली गई। इस दौरान निदेशालय ने लगभग 6,30,00,000 रूपये नकद और लगभग 7,50,00,000 रूपये की चांदी और महंगी घड़ियां जब्त की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज चांदनी चौक का दौरा किया। उपराज्यपाल ने प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में जलाभिषेक कर समस्त दिल्लीवासियों की शांति तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि यह ऐतिहासिक मंदिर अटूट आस्था और हमारे चार दीवारी वाले शहर की शाश्वत भावना का एक गहरा प्रतीक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भाजपा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन योजनाओं के अंतर्गत नव निर्माण कार्य, गलियों का नवी निर्माण, जल पाइपलाइन के बदलाव कार्य, नाहरपुर गांव में सीवर लाइन नवीनीकरण जैसे कार्य शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि इन विकास कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में बेहतर बुनियादी सुविधाएं, सुगम आवागमन और स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रयास रोहिणी को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक क्षेत्र बनाने की दिशा में निरंतर जारी रहेगी। राजौरी गार्डन से विधायक मंजिंदर सिंह सिरसा ने भी राजौरी गार्डन के सनशाइन निवासी कल्याण संघ के सदस्यों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया। साथ ही क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर श्री सिंह ने क्षेत्र के विकास योजनाओं के बारे में चर्चा की और कहा कि सभी जन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाएगा। विश्व भर में आज पार्किंसन रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जा रहा है। यह तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करने वाला विकार है। इस अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने पार्किंसन रोग के बढ़ते प्रसार और प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर चर्चा की। एम्स अगस्त तक फोकस्ड अल्ट्रासाउंड तकनीक प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। यह एक गैर आक्रामक प्रक्रिया है जिसमें कपकपी का इलाज करने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग के बाद पूरे भारत में एम्स पार्किंसन का सबसे सस्ता उपचार उपलब्ध कराएगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एम्स नई दिल्ली में न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर पी शरद चंद्र ने इस बात पर बल दिया कि पार्किंसन के लक्षण जो आमतौर पर बुजुर्गों में दिखाई देते हैं अब तेजी से कम उम्र के मरीजों में भी दिख रहे हैं।
पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लोग जानते नहीं है, जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं जो सिकुड़ते जाते हैं, जिसके वजह से मरीजों को सबसे पहले कंपन होती है, हाथ और पांव में अकड़न होती है, चलने में दिक्कत होती है, फिर मेमोरी लॉस भी हो सकता है। तो ये सारे एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स को हम इसको पार्किंसन बोलते हैं। नॉर्मली हम बुजुर्ग के एज ग्रुप में देखते हैं, यूजुअली 50s 60s, लेकिन आजकल देख रहे हैं यंग ऑनसेट पार्किंसन भी काफी कॉमन हो रहा है। बचाव देखिए 70-80% मेडिसिन से है। अब मेडिसिन कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम इनकी ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ऑपरेशन का नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन।
एम्स 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को पार्किंसन की जागरूकता के लिए वॉकथॉन और कई जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। दिल्ली मेट्रो ने साप्ताहिक जागरूकता अभियान के तहत आज लिफ्ट और एस्केलेटर के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जागरूकता अभियान चलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि पूरे नेटवर्क में 965 लिफ्ट, 1297 एस्केलेटर और 22 ट्रैवलर का संचालन और रखरखाव कर रही है। एक रिपोर्ट।
ये अभियान 13 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इसमें स्काउट और गाइड के स्वयंसेवक दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों के साथ मिलकर कुछ स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर के पास तैनात हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं जिनके जरिए वे यात्रियों को इन सुविधाओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा यात्रियों को सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए अधिक यात्रियों वाले कुछ स्टेशनों पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को अवसंरचना और जनजीवन संरक्षण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के संयुक्त अध्ययन में पता चला है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 18 किलोमीटर लंबे गणेशपुर आशारोड़ी खंड पर वन्य जीवों की सुरक्षा के उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में वंदे भारत एक्सप्रेस से लगभग 3,98,00,000 लोगों ने यात्रा की। यह पिछले वर्ष के 2,97,00,000 यात्रियों की तुलना में लगभग 34% की वृद्धि है। रेल मंत्रालय ने कहा कि यह वृद्धि देशभर के यात्रियों के लिए तेज, आरामदायक और आधुनिक रेल यात्रा के प्रति बढ़ती प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट।
मंत्रालय ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी शुरुआत के बाद से 1,00,000 फेरों के माध्यम से 9,10,00,000 से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर की गई थी। नई दिल्ली वाराणसी मार्ग अब तक 73 लाख से अधिक यात्रियों के साथ सबसे व्यस्त मार्ग है। लंबी दूरी के संपर्क को और मजबूत करते हुए भारतीय रेलवे ने जनवरी 2026 में वंदे भारत शयनयान सेवा शुरू की। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गाजीपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 155 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी एक ही गेस्ट हाउस में काम करते थे और स्थानीय क्षेत्र में नशीले पदार्थों की आपूर्ति में सक्रिय रूप से शामिल थे। नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत दिल्ली पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष में कल मैं भी अंबेडकर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस वजह से सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक महात्मा गांधी मार्ग, इंद्रप्रस्थ मार्ग, आईटीओ चौक, आसफ अली रोड, दिल्ली गेट चौक, नेताजी सुभाष मार्ग, राजनिवास मार्ग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग और हैमिल्टन रोड सहित अन्य क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे इन मार्गों से बचें और आउटर रिंग रोड, माल रोड और अन्य उपलब्ध रास्तों का उपयोग करें। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल कुतुब मीनार और दिल्ली विकास प्राधिकरण महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर और आसपास लोगों तथा वाहनों की भारी आवाजाही के मद्देनजर यातायात निर्देश जारी किए हैं। यातायात पुलिस ने बताया कि कल शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक अरुणव्रत मार्ग, क्रेसेंट रोड और कालकादास मार्ग तथा आसपास की सड़कों पर यातायात बाधित रहेगी। फूल मंडी, मस्जिद हाजी अली जान और कालकादास मार्ग से होते हुए कुतुब मीनार की ओर भारी और व्यवसायिक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। वहीं यातायात पुलिस ने लोगों को अरविंदो मार्ग और अन्य उपलब्ध रास्तों से होकर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वन रोपण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा ने कल नई दिल्ली में वन सीमाओं के निर्धारण और डिजिटलीकरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में जीआईएस आधारित वन सीमा डिजिटलीकरण को गति देने के लिए एक निश्चित कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया गया। इस पहल से सभी वन भूमि की सटीक पहचान संभव हो सकेगी। पाली भाषा संरक्षण और डिजिटल एआई मॉडल विकास पर दिल्ली विश्वविद्यालय में कल एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। यह आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन केंद्र के सहयोग से किया गया। कार्यशाला में लक्षित डेटा संग्रह और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पाली भाषा के लिए एआई मॉडल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में पंजीकृत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट। सरकार ने सावदा घेवरा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फ्लैट्स में 717 झुग्गी वासियों को आवास देने का निर्णय लिया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। और दिल्ली में कल मैं भी अंबेडकर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।